ओम शांति। सुबह आप सबने मुरली सुनी। आज मुरली किस त्योहार के ऊपर थी? कृष्ण जन्माष्टमी। और जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो हमें किसकी याद दिलाता है? किसकी याद दिलाता है? सतयुग की याद दिलाता है। और सतयुग को बाबा आज, वैसे तो बाबा बहुत सारे नामों से सतयुग को याद करते हैं, परंतु आज बाबा ने सतयुग को दो नाम दिए। क्या क्या कहा बाबा ने सतयुग के लिए? बाबा ने कहा कि एक तो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, दुनिया में 7 वंडर्स 8 वंडर्स दिखाते हैं ना, इतना बड़ा संसार। सतयुग में तो ये बहुत छोटा होता है ना, अब ये संसार बहुत बड़ा हो गया है, तो भी पूरे संसार में 7 वंडर्स 8 वंडर्स होते हैं और थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं सतयुग तो पूरा संसार ही वंडर है, क्योंकि वहां सब कुछ वंडरफुल होता है। आप में एक वंडर है, आज के समय में किसी को कहा जाए भाई सोने का घर बनाओ, महल बनाओ, बना दे कोई सोने का महल, तो वंडर हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं पुष्पक विमान, एक ऐसा विमान जिसमें कोई ईंधन नहीं है, कोई हंस के आकार का है, कोई मोर के आकार का है, कोई और किसी आकार का है। और बाबा कहते हैं कि एक छोटा बच्चा भी जिसको बहुत सहजता से चला सकता है, मन से कंट्रोल होता है, बटन तो उसमें ज्यादा होते नहीं। एक बार गुलजार दादी जी ने वतन में देखा पुष्पक विमान को, बाबा ने उनको दिखाया तो उन्होंने देखा कि उसमें ज्यादा बटन नहीं है, एक बटन दबाओ तो ऊपर उड़ने लगता है, एक बटन दबाओ तो आगे चलने लगता है, और एक बटन दबाओ तो नीचे लैंड कर जाता है। ज्यादा बटन्स नहीं होते हैं, मन के आधार से वो संचालित होता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वंडर है। बाबा कहते हैं कि वहां पर प्रकृति तो होती है, परंतु वो प्रकृति कभी भी हमें दुख नहीं देती है ना। अभी उत्तराखंड में बादल फट गए, पूरा गांव समाप्त हो गया, प्रकृति हमें दुख दे रही है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कभी सर्दी बहुत हो जाती है, परंतु 2500 वर्षों तक प्रकृति हमेशा बैलेंस्ड रहती है। बाबा कहते हैं ये भी एक वंडर है। तो बाबा कहते हैं ये पूरा संसार ही वंडर है, और आज बाबा ने उसको एक दूसरा नाम दिया, रंग बिरंगी दुनिया। गीत क्या था? ये दुनिया रंग बिरंगी, बाबा दुनिया रंग बिरंगी। पहले जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तब तो यज्ञ में इतने गीत बने नहीं थे, थे ही नहीं यज्ञ में गीत, अब तो बहुत सारे बन गए। तो फिल्मों के जो कुछ अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भाव वाले गीत थे, बाबा उनको सुन करके, बच्चों को सुना करके और उस पर पूरा ज्ञान एक्सप्लेन करते थे। बाबा एक चीज हमें ये भी सिखाते हैं कि एक कोई भी पॉइंट को पकड़ करके, अब उसमें सिर्फ इतना ही है कि दुनिया ये रंग विरंगी है, रंग रंगीली दुनिया है, तो उससे हम अपने ज्ञान को कैसे रिलेट करते हुए दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये दुनिया बहुत रंग विरंगी है, और ये रंग बिरंगी दुनिया बहुत जल्द आने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि हम सबको ऐसी दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में यदि हमको जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? स्वर्ग जैसी दुनिया में हमको जाना है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना, फिर तो सब चले जाए, फिर वहां भी भीड़ हो जाए, वो भी कलयुग जैसा ही हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि यदि जाना है तो बाप से पढ़ना है, और पढ़ाई भी हमारी कैसी है, भले बाबा सहज राजयोग सहज ज्ञान कहते हैं, परंतु न तो ज्ञान इतना सहज है और न ही योग इतना सहज है। जो करता है उसके लिए सहज है, जो जीवन में धारणाओं को अपनाता है उसके लिए सहज है, परंतु जो धारणाओं को अपनाता नहीं है, अन्न की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, स्नान ध्यान की शुद्धि, बोल आदि मर्यादित, बोल की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, उसके लिए यह ज्ञान कठिन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको बाप से पढ़ना है, इस रंग बिरंगी दुनिया में जाना है, यही हमारे जीवन का एम ऑब्जेक्ट है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा हमें इसी खुशी और नशे में रहना है कि मुझे ऐसी दुनिया में जाना है। क्यों खुशी में रहना है, हमें अपना एम ऑब्जेक्ट क्यों याद रहना चाहिए, क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य जब याद रहता है तो खुशी और उमंग जीवन में बना रहता है। लक्ष्य हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस अनुसार पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता रहता है। जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होता है तो ना तो खुशी रहती है, ना कुछ करने का उमंग रहता है, और ना ही हम पुरुषार्थ कर पाते हैं। पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, कोई कोई बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करते, और कोई बच्चे क्लास मिस करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। थोड़ा सा टीचर का ध्यान इधर उधर हुआ, फट से निकल करके भागेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मुझे जीवन में बनना क्या है, जाना कहाँ, तो करना क्या है ये भी पता नहीं होता है। परंतु जिनका लक्ष्य क्लियर है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें इस लक्ष्य को याद रखना है, इसी नशे और खुशी में रहना है। और बाबा ने कहा कि जिनको लक्ष्य याद नहीं रहता, कौन है वो, कौन है वो? बाबा ने दो नामों से आज संबोधित किया, जिनको अपना लक्ष्य याद नहीं रहता, जैसे कि मुर्दा। बाबा ने कहा ना, लक्ष्य याद नहीं तो जैसे कि मुर्दा। मुर्दा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना, उसको कुछ कहो ना कहो, उसको ना उमंग आएगा, ना उत्साह आएगा, ना कुछ करने की प्रेरणा आएगी, ना चेहरे पर कोई रौनक, उसको कितना भी सजा धजा लो, कुछ भी करो, एक शरीर जब मृत हो जाता है तो उसकी चेहरे की पूरी सुंदरता, उसकी रूहानियत, उसकी चमक, उसकी रौनक सब गायब हो जाती है। बाबा ने दूसरा भी एक शब्द कहा, जैसे कि भील। भील किसे कहते हैं? अब तो भील होते नहीं ना, शायद कहीं होते हो, अब तो होते नहीं है, बिल्कुल जंगल में जो रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं ना, जिनका रहन सहन बहुत ही निम्न प्रकार का होता है, खान पान बहुत निम्न प्रकार का होता है, उनका जीवन बिल्कुल जैसे कि अस्त व्यस्त होता है, ना कपड़े पहनेंगे, ना कोई साधन, ना सुविधा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य भी हमें भील, लक्ष्यहीनता, लक्ष्य की विस्मृति हमें एक भील की तरह बना देता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए लक्ष्य का याद रहना बहुत ही जरूरी है। और बाबा कहते हैं कि ये संसार, ये जो स्वर्गिक संसार है, केवल यही रंग बिरंगी नहीं है, बल्कि ये जो इस संसार का इसमें जो खेल चलता है, ये जो ड्रामा का खेल है, ये भी कैसा है? ये भी बहुत रंग बिरंगी है। बस देखने का नजरिया वैसा चाहिए। दुनिया में फिल्में बहुत बनती है ना, फिल्मों से पहले नाटक हुआ करते थे। चाहे कैसी भी फिल्में बने, चलती तो है ना, लोग तो उसको देखते हैं। कोई फिल्में ज्यादा चल जाती हैं और कोई फिल्में कम चलती हैं। किसको पॉपुलैरिटी अधिक मिलती है लेकिन किसी को कम, पर मिलती तो है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो खेल है ना, अगर उसको खेल की तरह देखते हैं तो उसमें आनंद आता है। उसमें भी बहुत सीन सीनरी ऐसे आते हैं जो हमको आनंदित करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह खेल भी बहुत ही रंग रंगीला है। और बाबा ने बाइस्कोप का रेफरेंस देते हुए कहा, हम बाइस्कोप देखते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हम बाइस्कोप से डिटैच होकर के उसको देखते हैं। परंतु ये दुनिया का ड्रामा है, हम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको हम रियल मान लेते हैं। बाबा कहते हैं इसको भी यदि हम डिटैच होकर के देखते हैं तो ये खेल भी हमको बहुत रंग रंगीला महसूस होगा। एक साधु संत महात्मा भी इसी संसार में रहता है, आम इंसान भी इसी संसार में रहता है, पर दोनों के टेस्ट में फर्क होता है ना। एक रोते रोते जिंदगी बिताता है और एक हंसते हंसते जिंदगी बिताता है। दोनों इसी संसार में जी रहे हैं, जी भी रहे हैं, परंतु एक रोते रोते जीता है, एक हंसते हंसते जीता है। देखने का नजरिया दोनों का अलग है। संसार तो दोनों के लिए एक ही है, बदलता नहीं है, परिस्थितियां भी दोनों के जीवन में है, देखने का नजरिया। तो बाबा कहते हैं हमें ऐसे संसार में जाना है। और बाबा कहते हैं ऐसे संसार में जाने से पहले एक बहुत बड़ी महाभारत लड़ाई लगनी है। अब तो हम देख रहे हैं ना, चारों तरफ ऐसे सीन सीनरी क्रिएट हो रहे हैं जिससे महसूस होता है कि थर्ड वर्ल्ड वार कभी भी हो सकता है। पूरे संसार में युद्ध की अग्नि जैसे कि अंदर ही अंदर धधक रही है। वो कब फट करके ग्राउंड पर आ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा संसार आएगा जरूर, स्वर्ग का गेट खुलेगा जरूर, लेकिन खुलने से पहले एक महाभारत लड़ाई लगेगी और उस लड़ाई के बाद ही ये संसार आएगा। लोग अक्सर कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी वाले जब देखो तब विनाश की बात करते हैं, उनके लिए ये विनाश अशुभ लगता है, लेकिन हमारे लिए ये विनाश शुभ है। अभी थोड़े दिन के पहले की एक मुरली में पढ़ रहा था, बाबा ने कहा इस संसार को कितना भी कोशिश कर लो, ये सतो प्रधान होने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। 772 या कब की कोई मुरली थी, तो बाबा ने कहा इसका विनाश ही एकमात्र तरीका है। विनाश के बाद एक स्वर्णिम संसार आएगा। तो हम दूसरों को जब भी समझाएं, ज्ञान को बड़ा ढंग से समझाना है। बाबा कहते हैं कि अगर वहां जाना है तो सेवा भी करनी पड़ेगी। जाना तो हमको है ही है, परंतु हम अकेले तो जाएंगे नहीं। अकेले अगर चले भी गए तो अच्छा लगेगा? आपका इतना बड़ा महल, बाबा कहते हैं माउंट आबू जितना एक एक का महल होगा, इतनी जमीन होंगी, इतना बड़ा महल होगा, अकेले क्या करेंगे वहां पर? तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी साथ ले जाना है। तो ये ज्ञान, ये संदेश बाबा का दूसरों को देना है तो क्या करना है? बाबा कहते हैं ये जो त्योहार है ना, ये दूसरों को ज्ञान सुनाने का, संदेश देने का बहुत अच्छा साधन है। और बाबा आज ही नहीं, बहुत सारी मुरलियों में बाबा का ये बहुत कंसर्न रहता है कि हम सेवा के नए नए बहाने ढूंढें। ज्ञान को कब कैसे देना है उसके नए नए बहाने हम क्रिएट करते रहें, ढूंढते रहें। और बाबा कहते हैं ये जो त्योहार आते हैं ये सेवा के बहुत सुंदर बहाने हैं। और भारत तो है ही त्योहारों का देश, यहां आए दिन हर महीने में दो चार त्योहार तो आते ही हैं, एक दो तो बड़े त्योहार होते ही हैं, कभी होली, कभी दीपावली, कभी रक्षाबंधन, कभी शिवरात्रि, कभी जन्माष्टमी। बाबा कहते हैं किसी भी एक त्योहार को लो, उस पर एक टॉपिक बनाओ और उस पर लोगों को ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि ये जो त्योहार हैं वो बहुत अच्छे साधन हैं ज्ञान देने का, जो ज्ञान में होशियार होंगे वो अच्छी रीति समझाएंगे। तो बाबा ने आज कृष्ण जन्माष्टमी को माध्यम बना करके ज्ञान कैसे सुनाना है, बाबा एक पिता की तरह, जैसे लौकिक पिता होता है ना या लौकिक शिक्षक होता है, बाबा ऐसे शिक्षक की तरह, पिता की तरह छोटी छोटी बातें भी कैसे हमको सिखाते हैं वो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर मान लो ये जन्माष्टमी का त्योहार है उसमें से एक टॉपिक निकाल लो। बाबा ने कहा इसमें क्या टॉपिक निकल सकता है, बाबा ने कहा श्याम और सुंदर, कैसे कृष्ण श्याम से सुंदर और सुंदर से फिर श्याम बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि इस पर जो होशियार बच्चे हैं वो ज्ञान समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे, ये श्री कृष्ण कौन है और ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ होता है, भारत में होता है। अब वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ चला गया, बाबा कहते हैं कैसे हम धीरे धीरे वंडर ऑफ द वर्ल्ड से सीढ़ी उतरते उतरते कलयुग के अंत तक आते हैं। फिर बाबा कहते हैं वापस हमको फिर उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना है, तो कैसे जाना है, कौन ले जाएगा और जाने का साधन क्या है ना, कौन ले जाएगा, तो बाबा ले जाएगा, बाबा का ज्ञान आ जाएगा उसमें आ गया। कैसे जाएंगे, क्या साधन बाबा हमको देते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग, तो उसमें हम ज्ञान और योग की बातें भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से हमें पॉइंट्स निकाल निकाल करके अपना एक सुंदर भाषण तैयार करना चाहिए, इससे हम दूसरों को ज्ञान बहुत ही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं भाषण तैयार करो। अब बाबा कहते हैं ये भी समझाते हैं कि भाषण हमको कैसे तैयार करना है। तो आज की मुरली में बाबा ने जितनी बातें कही हैं, आप में से ज्ञान सुनाने का शौक किसको है, हाथ खड़ा करें। किसको लगता है कि मैं बाबा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह दूसरों को समझाऊं। तो आज की मुरली में जो बाबा ने भाषण देने के तरीके बताए हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे हमारे यज्ञ में जितने भी बड़े भाषण देने वाले यही सब चीजों पर ध्यान रखते हैं। आप भी यदि रखेंगे आप भी एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। किन बातों पर ध्यान रखना है, बाबा ने कहा कि बच्चे विचार सागर मंथन करो। किस पर विचार सागर मंथन करो, ये जो पीछे बातें बताई ना बहुत सारी कि कृष्ण कौन है, श्याम से सुंदर कैसे बनता है, ये दुनिया वंडर ऑफ द वर्ल्ड थी, भारत ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, नीचे आ गया, फिर कैसे इसको ही जाना है, कौन ले जाता है, ले जाने के लिए बाबा क्या तरीका हमको सिखाते हैं, कब ये होता है ऐसा, भगवान का बात है, ये जो बातें पॉइंट्स बाबा ने दी, बाबा कहते हैं इस पर विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करते हैं तो दो फायदे होते हैं, पहला तो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं और दूसरा हमारा ज्ञान जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ज्ञान हम सबके पास है, घंटा दो घंटा हम किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ स्टेज पर बिठा दिया जाए तो बोलना कठिन हो जाता है ना। हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिक ढंग से बोल नहीं पाते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनमा जोड़ा वाली स्थिति हो जाती है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। पर लोगों को यदि बहुत सिस्टम से ज्ञान को नहीं समझाया तो समझ में आता नहीं है। तो विचार सागर मंथन से एक तो नई नई पॉइंट्स आती हैं और दूसरा हमारा ज्ञान ऑर्गेनाइज होने लगता है। इसलिए ब्राह्मणों को चिंतन करने की आदत जरूर डालनी चाहिए। और बाबा कहते हैं कि चिंतन तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतर समय कौन सा है? बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके लिखना चाहिए। केवल चिंतन नहीं करना है। जब हम लोग आए थे यज्ञ में, छोटे थे, हमें बोलना नहीं आता था, तो हमारे बड़े, हमारी दादियां चंद्रमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, सूर्य भाई जी, ये हम लोगों को सिखाते थे कि केवल आपको चिंतन नहीं करना है, अपने चिंतन को लिखना है। तो चिंतन को लिखना है सवेरे सवेरे उठकर, और फिर उसको बार बार पढ़ना है। अगर बार बार पढ़ेंगे तो कहाँ कमी है वो समझ में आएगा, फिर उसको आप रिफाइन करेंगे। तो बार बार लिखना, बार बार पढ़ना, इससे संशोधन होता है और हमारा जो भाषण है, जो क्लास है, वो रिफाइन होता जाता है। टॉपिक पर, विषय पर हमारी पकड़ बनती है। आगे बाबा कहते हैं कि बार बार पढ़ करके उसमें नए नए पॉइंट्स ऐड करो। फिर बाबा कहते हैं कि हरेक स्पीकर के साथ शुरू में एक प्रॉब्लम होती है, बाद में भी होती है, पुराना होने के बाद भी। जो सोच करके जाएंगे वो सब नहीं बोल पाएंगे। आज बाबा ने कहा ना कुछ भूल जाएगा। अभी भी हम लोग कई बार ऐसा होता है, सोच के कुछ आते हैं, भूल जाता है, कुछ नया जुड़ जाता है, तो कुछ न कुछ भूल जाएगा। बाबा कहते हैं भाषण के लिए अगला स्टेप है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छी रीति समझा पाएंगे। तो प्रैक्टिस, जो कुछ हम चिंतन करते हैं, अपना विषय तैयार करते हैं, अवसर मिलने पर हम मना ना करें, हम उसकी प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से बाबा कहते हैं हमारा विषय अच्छा होता जाता है। और बाबा कहते हैं कि भाषण देने के लिए केवल विषय या बोलने की कला ही काफी नहीं है। दुनिया में भी बहुत लोगों के पास विषय बहुत अच्छा होता है, बोलते बहुत दमदार तरीके से है, लेकिन सुनने तक ही प्रभाव रहता है, बाद में वो प्रभाव रहता नहीं है। उसमें प्रभाव डालने के लिए क्या करें? बाबा ने कहा उसमें जौहर भी भरना पड़ेगा। और वो जौहर कहां से आता है? योग से। तो ज्ञान के चिंतन के साथ साथ योग उसमें जौहर भरता है और फिर उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। बाबा कहते हैं इन त्योहारों पर समझाना बहुत सहज है। ऐसे हर त्योहार पर हम अपना एक विषय बना सकते हैं और विषय के साथ अगर योग जोड़ देते हैं तो हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान सहज रीति समझा सकते हैं। मुरली तो बड़ी थी, बहुत सारी बातें हैं इसमें रिवीजन की, लेकिन 10 बज गया है, इसलिए अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमारे बीच राजू भाई जी आने वाले हैं, तो अभी हम राजू भाई जी का आह्वान करेंगे। ओम शांति।